हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल जय विश्वपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोपनिषद श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन विविटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शिष्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। तो अभी दो ही दिनों बाद नरसिंह जयंती का उत्सव हम लोग मना रहे हैं। पिछले रविवार को हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ की थी प्रह्लाद महाराज के गुणों की। वैसे तो प्रह्लाद महाराज के गुण असीमित हैं, जैसे भगवान के गुण असीमित हैं। प्रह्लाद महाराज के गुणों में से एक गुण है जिसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे कि जैसे परमात्मा सभी के सुहृद हैं, ऐसे ही प्रह्लाद महाराज भी सभी जीवों के सुहृद हैं। तो इसी प्रकार जैसे भगवान के गुण असीमित हैं, नारद मुनि बतलाते हैं कि प्रह्लाद महाराज के भी गुण असीमित हैं, उनकी वो व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए थोड़े से गुणों की चर्चा उन्होंने की, जिसमें से प्रमुख गुण था, जैसे हम लोग रविवार को चर्चा कर रहे थे, वासुदेव भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। ये सबसे महत्वपूर्ण गुण प्रह्लाद महाराज का था। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि इस श्लोक जो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नारद मुनि के द्वारा कहा गया श्लोक को दोहराया, वासुदेव भगवती, इससे पता चलता है बहुत स्पष्टतः प्रह्लाद महाराज श्री कृष्ण के, वसुदेव के पुत्र वासुदेव के भक्त थे। अर्थात नरसिंह देव और वासुदेव कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान के जितने अवतार होते हैं उनमें वैसे तो कोई अंतर नहीं होता, लेकिन फिर भी मूल रूप में भगवान अपने आप को बनाए रखते हैं गोलोक धाम में। चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, वही कृष्ण हैं और वही नरसिंह देव हैं। साधारणतः चैतन्य महाप्रभु का संबंध कृष्ण लीला से किया जाता है, लेकिन अगर चैतन्य चरितामृत का अध्ययन हम लोग करें तो पाएंगे कि कई स्थानों पर नरसिंह देव से चैतन्य महाप्रभु का संबंध बड़ा गहरा रहा है। एक ब्रह्मचारी थे जिनका नाम था प्रद्युम्न ब्रह्मचारी। ये नरसिंह देव के भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में जानते थे, लेकिन फिर भी नरसिंह देव से बड़े आसक्त थे और उनकी इस भक्ति, उनके इस प्रेम और आकर्षण रति को देखकर ही चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम दिया नरसिंहानंद ब्रह्मचारी, जो नरसिंह देव को आनंद प्रदान करते हैं। और उनकी भक्ति क्या थी नरसिंह देव के प्रति? एक समय उन्होंने 3 भोग की प्लेट बनाई, एक जगन्नाथ जी के लिए, एक नरसिंह देव के लिए और एक चैतन्य महाप्रभु के लिए। और तीनों प्लेटें उन्होंने रखी और ध्यान करने लगे, भगवान का आह्वान करने लगे कि आप आइए, भोग ग्रहण कीजिए। भगवान जब भोग ग्रहण करते हैं तो उसको प्रसाद में परिवर्तित कर देते हैं। तो उन्होंने देखा ध्यान में कि चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने 3 प्लेट खा ली। नरसिंहानंद ब्रह्मचारी फिर चैतन्य महाप्रभु से बात करने लगे और कहने लगे कि ये आपने क्या किया, आप और जगन्नाथ एक हैं, ये मैं जानता, आप में और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है, तो अगर आपने जगन्नाथ जी की प्लेट खा ली तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप और जगन्नाथ एक हैं, लेकिन नरसिंह देव की प्लेट क्यों आपने खा ली? और उन्होंने कहा कि आज मेरे स्वामी भूखे रह गए हैं तो मैं भी उपवास करूंगा। चैतन्य महाप्रभु उनके इस प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने उन्हें एक रूप दिखलाया जिसमें उन्हें पता चला कि चैतन्य महाप्रभु और नरसिंह देव में कोई अंतर नहीं। ऐसी कई कथाएं चैतन्य लीला में हमें मिलती हैं, जैसे श्रीवास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने दिखलाया जब वो नरसिंह देव की भक्ति कर रहे थे, दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर रहे थे नरसिंह देव से रक्षा की, बचाइए, उस समय उन्होंने वो रूप उन्हें दिखलाया चैतन्य महाप्रभु ने और कहा कि मैं वही हूँ जिसकी तुम आराधना कर रहे हो, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो। और फिर हम लोग देखते हैं वो बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग चांद काजी का, जहाँ नरसिंह देव ने कीर्तन जब बंद हो गया तो किस प्रकार काजी को उन्होंने शिक्षा दी। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि चैतन्य लीला में कृष्ण के बाद, जब चैतन्य लीला को देखा जाए तो कृष्ण लीला से तो संबंधित है ही, लेकिन नरसिंह लीला से भी बहुत ज्यादा संबंध चैतन्य महाप्रभु ने दिखलाया। कभी कभी वो आवेश में आ जाते थे, एक समय वो आ गए थे नरसिंह देव के आवेश में, फिर सभी भक्तों ने प्रार्थना की तो वो शांत हो गए। तो ऐसे भगवान अनेक रूप लेते हैं, अद्भुत रूप धारण करते हैं केवल भक्तों को आनंद देने के लिए। और नरसिंह देव का रूप भी बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही सुंदर है। साधारणतः नरसिंह देव का रूप देखते ही लगता है कि बड़ा भयानक रूप है और नरसिंह देव दहाड़ रहे हैं, उसको हिरण्यकशिपु को फाड़ रहे हैं, तो बड़ा भयानक लगता है। लेकिन आप प्रहलाद की दृष्टि से देखिए, भक्त की दृष्टि से देखिए, भक्ति की दृष्टि से देखिए, तो बड़ा ही मधुर, बड़ा ही वात्सल्य भाव उससे प्रकट होता है। इसीलिए ऐसा समझाया गया है कि भक्तों के लिए ये रूप वैसे है जैसे जब एक शेरनी होती है तो वो शेरनी सभी लोगों के लिए बड़ी डरावनी है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो तो वहीं पर आनंद लेते हैं, बच्चों के लिए अगर वो अपनी माँ को शेरनी को छोड़कर अगर कहीं चले जाएं तो डर पैदा हो जाता है, तो आनंद चला जाता है। लेकिन जब तक अपनी माँ के पास है, शेरनी के मुख में है, तब बड़े आराम से रहते हैं, आनंद में रहते हैं। ऐसे ही भक्त हैं, तो भक्तों को नरसिंह देव का रूप ऐसे ही दिखलाई देता है। और ये प्रहलाद के गुण हैं। प्रहलाद के गुणों की चर्चा नारद मुनि ने प्रारंभ की। सबसे पहला गुण बतलाया, हम लोगों ने चर्चा की थी, महत उपासक। महत अर्थात भगवान, या फिर महत अर्थात भगवान के भक्त। जैसे हम लोग कहते हैं कि प्रहलाद महाराज ही बतलाएंगे कि जब तक महत लोगों के चरणों की रज का अभिषेक नहीं करते तब तक भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो महत उपासक मतलब वो ऐसे थे जो सदैव भक्तों की उपासना करते थे। भक्त आराध्य होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है, जैसे भगवान श्री कृष्ण आराध्य हैं, आराध्य भगवान कृष्ण है, वैसे ही उनका धाम वो भी आराध्य है, उनके भक्त वो भी आराध्य है। और भक्तों की आराधना शिवजी समझाते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ आराधना है। भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली आराधना है। आराधना नाम सर्वेशां विष्णुराराधना परम। भगवान की आराधना तो परम है, लेकिन उससे भी परे है तदीया नाम समार्चनम। उनके जो भक्त हैं उनकी आराधना परम है। इसीलिए प्रहलाद महाराज महत उपासक थे, ऐसे लोगों का संग करते थे जो भगवान के भक्त थे, प्रयास करते थे। और अगर ऐसा संग नहीं मिलता, क्योंकि वे तो एक असुर कुल में उन्होंने जन्म लिया, वैसे असुर कुल में नहीं लिया था, उनका कुल बहुत श्रेष्ठ था। ये तो कहा जाता है कि असुर, क्योंकि हिरण्यकश्यपु एक असुर हुए। लेकिन अगर उनकी कुल परंपरा देखें, व्यक्ति को कैसे जाना जाता है, एक व्यक्ति को एक उसके कुल से जाना जाता है, यह जाना जाता था। आजकल तो ना कुल है ना परंपराएं हैं, तो कुल से जाना जाता था। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र थे हिरण्यकश्यपु, और हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं प्रहलाद। तो ब्रह्मा जी से चौथी पीढ़ी, कितना महान कुल है उनका। तो इस प्रकार वैसे तो वो असुर हुए कहलाए। असुर शब्द का अर्थ होता है, ये दो भागों में है, असु और र। असु शब्द का होता अर्थ होता है इंद्रियां, और र मतलब जो रत है। तो असुर शब्द का अर्थ होता है जो केवल इंद्रिय भोग में रत है, उसे असुर कहते हैं। फिर वो चाहे हिरण्यकश्यपु हो, फिर वो चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर वो केवल इंद्रिय भोग में रत है तो वो असुर है। और उसके विपरीत होते हैं सुर, भगवान के भक्त, जिनका केवल एक ही कार्य होता है, मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयंता परस्परम। भगवान की कथाओं को सुनना, उनके गुणों को जानना, उनका गुणगान करना, उनके नामों का उच्चारण करना, ये भगवान के भक्तों का कार्य है, और ये प्रमुख कार्य है। बाकी सारे कार्य हम लोग केवल यही कार्य करने के लिए करते हैं, ताकि हमें उत्साह मिले, हमें प्रेरणा मिले, हम भोगों से दूर रहकर अच्छी तरह से भगवान का नाम ले सकें। तो महत उपासक, इसलिए हम सबको भी ये जानना चाहिए कि प्रहलाद महाराज के इस गुण महत उपासक को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवान के भक्तों की आराधना, भगवान के भक्तों का संग, क्योंकि जैसा हमारा संग होगा हमारी चेतना वैसे ही बनती है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, मंदिर में ठीक है, बाहर जाकर हम चेतना बनाए नहीं रख पाते, क्योंकि हमारा संग वैसा नहीं। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए, प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए कि असुरों के बीच में रहते हुए भी वो भगवान का स्मरण करते थे, और कारण था महत उपासक, सदैव भक्तों का चिंतन करते थे। बृहद भागवतामृतम में बहुत सुंदर वर्णन आता है, प्रहलाद महाराज ध्यान में हैं, नारद मुनि उनके सामने आते हैं, नारद मुनि उनके गुरु हैं। होना तो चाहिए था कि प्रहलाद महाराज तुरंत दंडवत प्रणाम करते, लेकिन प्रहलाद महाराज ध्यान में थे। मगर ध्यान में ही जैसे उन्हें पता चला कि नारद मुनि आए हैं, तो उन्होंने मन ही मन उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। नारद मुनि ने उसे स्वीकार किया। महत उपासक भक्तों की आगे भी हम लोग उनके जीवन में देखते हैं, प्रहलाद महाराज के जीवन में, कि जब उनकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई, वो ब्राह्मण जो सड़क पर ऐसे ही गिरा हुआ था, कपड़े वस्त्र कुछ पहने हुआ नहीं था, लेकिन उसके गुणों को देखकर बड़े आदर और सम्मान से प्रहलाद महाराज ने उनसे प्रश्न पूछे और फिर जान गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज को महत उपासक कहा गया है। दूसरा गुण आगे वर्णन करते हैं, अगले श्लोक में नारद मुनि वर्णन करते हैं। बहुत सारे गुणों का वर्णन है, हम लोग एक एक पढ़ेंगे। ब्रह्मण्यशील संपन्न सत्य संधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तम। दूसरा गुण उनका बतला रहे हैं नारद मुनि, ब्राह्मण्य। वो ब्राह्मण्य थे। ब्राह्मण्य किसे कहते हैं? इस जगत में दो वस्तुएं हैं, एक ब्रह्म और दूसरी माया। ब्रह्म वस्तु अर्थात भगवान, जीव, भगवान से संबंधित सभी चीजें, जैसे शास्त्र, शास्त्रों को भी ब्रह्म कहते हैं, शब्द ब्रह्म। तो ये ब्रह्म वस्तुएं हैं। ब्रह्म वस्तुओं का अर्थ होता है ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें ब्रह्म की ओर ले जाएं, या ब्रह्म को पर ब्रह्म की ओर ले जाएं, उन्हें ब्रह्म वस्तुएं कहते हैं। और दूसरी होती है माया। माया वो वस्तुएं हैं जो हमें ब्रह्म से परे ले जाएं, जो हमें दूर ले जाती है, आसक्ति, भोग, ये सारी चीजें हमें भगवान से दूर ले जाती है। तो इसलिए इनको माया कहते हैं। माया अर्थात वो जो नहीं है। एक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्म के अलावा तो और कोई सत्य नहीं है, ये जगत तो माया है। लेकिन फिर भी क्योंकि निर्मिति है भगवान की, जैसे बताया गया है ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया, तो ब्रह्मांड बनाया है भगवान ने। तो इसीलिए ब्रह्म वस्तु को जो जानता है, जो अपने आप को ब्रह्म में स्थित करना मतलब सही ज्ञान में स्थित करना, तो जो अपने आप को ब्रह्म में स्थित करता है, ब्रह्म वस्तु को जानता है और पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को पाने का प्रयास करता है, उसे ब्राह्मण्य कहते हैं। दूसरी ओर जो व्यक्ति ब्रह्म को नकार देता है, पर ब्रह्म की ओर जाने का प्रयास नहीं करता, भगवान से सभी संबंधित वस्तुओं से परे रहता है, उसे एक दृष्टि में मायावादी कह सकते हैं। मायावादी वैसे उन लोगों को भी कहते हैं जो भगवान के शरीर को माया का बना हुआ शरीर मानते हैं, माया से बना हुआ। लेकिन ऐसे लोग भी मायावादी कहलाते हैं जो ब्राह्मण्य नहीं है, जो ब्रह्म पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की ओर जाने का प्रयास नहीं कर रहे, ऐसे लोगों को भी मायावादी कहा जा सकता है, या माया के चंगुल में उनको कहना चाहिए। तो इसीलिए सबसे दूसरा गुण उनका समझा रहे हैं यहां पर कि वो ब्राह्मण्य थे, ब्रह्म वस्तु में ही आनंद लिया करते थे। दरअसल हम लोग जब भक्ति करते हैं और भक्ति करते हुए भी अगर भगवान के सौंदर्य को, भगवान के ऐश्वर्य को हम ध्यान नहीं देते, या एक ऐसे दृष्टिकोण से देखते हैं जिसमें भक्ति नहीं है, तब फिर हम भक्त होते हुए भी ब्राह्मण्य नहीं कहला सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी चीज को अलग अलग नजरिए से देखते हैं, एक ही चीज है। जैसे भगवान थे जब यहां इस धराधाम पर लीला कर रहे थे, तो दुर्योधन ने भी देखा, अर्जुन ने भी देखा। अर्जुन ने कहा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, और दुर्योधन ने क्या कहा, अरे ये माया भी है, इसको पकड़ना चाहिए, ये ग्वाला हमें धोखा दे रहा है। तो दोनों ने उन्हीं को देखा था, कृष्ण को। जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण है इस बात का कि कैसे हम चीजों को देखते हैं, अगर हमारा देखने का दृष्टिकोण नकारात्मक है, कैसे देखना चाहिए चीजों को। भक्ति मार्ग में हमारी दृष्टि सकारात्मक होनी चाहिए। हर चीज को अगर हम नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो फिर उसका लाभ नहीं होगा। एक कथा बताई जाती है, एक ऐसे ही कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति ने अपने कुत्ते को एक सिद्धि प्राप्त करवा दी कि उसका कुत्ता जल पर चल सकता था, पानी पर चल सकता था। तो बहुत अच्छी बात है, जब वो वापस आया गांव में तो उसने सोचा अब मुझे बताना चाहिए। तो उसने अपने एक मित्र से कहा कि चलो हम नदी पर जाएंगे और कुछ थोड़ा शिकार इत्यादि करेंगे। तो दोनों मित्र मिलकर नदी पर गए और जल में रहने वाले जो प्राणी थे उनका उन्होंने शिकार किया, 4-6 प्राणी मार दिए। और जब वो जल में ही थे, अब उन्हें बाहर निकालना था जल से, तो अब ये चाहते थे कि अपने कुत्ते का जो कौशल है, जो कला है, उसको दिखलाऊं। तो उन्होंने अपने मित्र से कहा नहीं नहीं तुम मत जाओ, अपने कुत्ते को बोला कि जाओ वो लेकर आओ। तो कुत्ता गया पानी पर चलता हुआ और उसने सारे वो जितने मारे थे वो लेकर आ गया। तो ये मित्र सोच रहा था कि जिसका कुत्ता था, कि ये दूसरा सोच रहा था मित्र की अभी कुछ कहेगा, अरे कितने आश्चर्य की बात है तुम्हारा कुत्ता पानी पर चलता है इत्यादि। उसने कुछ नहीं कहा, बड़ा शांत रहा। खैर थोड़े समय दोनों साथ में रहे, फिर वापस आने लगे, उसने कुछ नहीं कहा। जब कुछ नहीं कहा तो ये मित्र को जरा चिंता हो गई कि क्या बात है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम लोग कुछ विशेष करें और कोई उसको रिकॉग्नाइज नहीं करे, कोई उसको मान सम्मान नहीं दे या उसको उसका गुणगान नहीं करे, तो हम लोगों को टेंशन होने लगती है ना। आप लोग नए कपड़े पहन कर आओ, बड़े अच्छे, पहली बार मंदिर में कोई माता जी हैं या प्रभु जी हैं, और कोई आपको आसपास कहे ही नहीं कि प्रभु जी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो फिर थोड़ी देर में आप चिंता में हो जाओगे क्या हो रहा है। फिर अपने आप जाकर उसी को पूछोगे कलर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो वो पूछे अच्छा अच्छा नया है क्या, हाँ हाँ नया है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ इतनी देर से। तो फिर मित्र ने उससे पूछ ही लिया, उसने कहा तुमने कुछ देखा मेरे कुत्ते में, कोई विशेष बात है? तो उसने कहा हाँ मैंने देखा। तो बड़ा प्रसन्न हो गया, तो क्या देखा? उसने कहा मैंने देखा कि तुम्हारे कुत्ते को तैरना नहीं आता है। यानी उसने भी वही बात देखी, उसने देखा कि कुत्ता चल रहा है, लेकिन उसको किस दृष्टि से देखा कि अरे इसको तैरना नहीं आता है, उसकी कमी को देखा। वो सोच रहा था कि बड़ा गुणगान होगा तुम्हारा कुत्ता तो पानी पर चलता है, उसने कहा नहीं इसको तैरना नहीं आता, कमी है। तो देखिए दोनों चीजें, एक देख रहा है कि पानी पर चल रहा है और दूसरा देखता है कि ये इसको तैरना नहीं आता इसीलिए चल रहा है। तो ये हमारा देखने का दृष्टिकोण, इसको हमें बदलना चाहिए। तो माया निर्मित चीजों को जब हम लोग इस नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, या भगवान की भक्ति के मार्ग में अगर हम ऐसे नकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, तो हर चीज में हम केवल ऐसी ही कमियों को देखेंगे, गलतियों को देखेंगे। लेकिन जब हम अपना दृष्टिकोण सकारात्मक कर लेते हैं, तब वही चीजें जो दूसरों की दृष्टि में हो सकता है कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, लेकिन हमें वो सही लगती हैं, हम उसमें से कोई अच्छी चीज निकाल सकते हैं। जैसे चाणक्य पंडित समझाते हैं कि अगर सोना कीचड़ में भी पड़ा हो तो उसको ले लेना चाहिए। अच्छी गुणवती स्त्री अगर किसी नीचे कुल की भी हो तो उससे विवाह करना चाहिए, ऐसे चाणक्य पंडित कहते हैं। किस लिए कहते हैं? कि सोना भले ही कीचड़ में क्यों ना हो, अपने गुण को नहीं खोता है, उसके गुण बने रहते हैं। तो इसीलिए जब हम अपनी दृष्टि सकारात्मक करते हैं तब हम बड़ी आसानी से भक्ति में चाहे कितने ही कमियां क्यों ना हो, भक्तों में हमारे आसपास में हमें कितने ही कमियां क्यों ना दिखाई दे, लेकिन अगर जस्ट केवल हम अपने दृष्टिकोण को बदलें तो फिर बड़ी आसानी से हम भक्तों में अच्छे गुण देखते हुए बड़ी प्रसन्नता से भक्ति मार्ग में रह सकते हैं। अन्यथा अगर कोई व्यक्ति में केवल दोष ढूंढने की आदत है तो फिर उसके लिए बड़ा कठिन होगा भक्ति में रहना, क्योंकि पहले वो अपने आसपास के लोगों में दोष ढूंढता है, फिर भक्तों में, फिर गुरु में और फिर भगवान में। तो ऐसा व्यक्ति कभी समर्पण नहीं कर सकता, इसलिए दोष ढूंढने की जो प्रवृत्ति है इससे बचना चाहिए। ये कैंसर के समान है, फैलती जाती है, सारे शरीर को समाप्त कर देती है। तो इसीलिए ब्रह्म वस्तु ब्रह्मण्य बनना चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज का यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रहलाद महाराज वैसे भक्तों में बड़े श्रेष्ठ हैं। श्रील प्रभुपाद एक बार प्रवचन कर रहे थे और श्रील प्रभुपाद ने कहा प्रहलाद महाराज बेस्ट डिवोटी है, सबसे अच्छे डिवोटी, प्रहलाद महाराज इज द बेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। कुछ समय बाद उन्होंने कहा युधिष्ठिर महाराज इज द बेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। थोड़े समय बाद उन्होंने कहा गोपीज आर द बेस्ट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो फिर एक भक्त से रहा नहीं गया, उसने वो सारे प्रवचन सुने थे, तो उसने जाकर प्रभुपाद से पूछा प्रभुपाद एक स्थान पर आप कहते हो प्रहलाद महाराज इज द बेस्ट, एक जगह कहते हो युधिष्ठिर महाराज इज द बेस्ट, एक जगह कहते हो गोपीज आर द, है कौन वो बताओ, तीनों में से कौन श्रेष्ठ? बोला नहीं नहीं प्रहलाद महाराज इज बेस्ट। अच्छा, और युधिष्ठिर महाराज ही इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और गोपीज दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ऐसे प्रभुपाद ने समझाया। तो खैर प्रहलाद महाराज के गुण है कि ब्राह्मण है। दूसरा गुण उनका आगे वो बतला रहे हैं शील संपन्न। हाँ, शील संपन्न अर्थात बड़े नम्र थे, नम्रता, शील और संपन्न पूर्ण रूप से उनमें थी वो नम्रता। प्रहलाद महाराज की नम्रता देखिए, प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु ने क्या क्या कष्ट नहीं दिए। प्रहलाद महाराज भक्त होने के नाते जानते थे कि हिरण्यकश्यपु ये गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब अपने पिता के सामने आए, भागवत में वर्णन है, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। इतने महान भक्त महाजन है प्रहलाद महाराज, सारा ज्ञान था उस समय भी उन्हें भक्ति का, लेकिन उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, कुछ भक्ति करने लगते हैं, और हमारे घर में अगर कोई भक्त नहीं है तो हम कहते हैं अरे वो तो कर्मी है, जैसे हम लोग बहुत बड़े भक्त हो गए। तो ऐसा नहीं है, प्रहलाद महाराज शील संपन्न, इतना कष्ट दिया लेकिन उन्होंने बड़ी नम्रता से अपने आप को पेश किया। प्रहलाद महाराज की नम्रता देखिए कि उस पिता को जिसने इतना कष्ट दिया, जब नरसिंहदेव ने सब कुछ समाप्त कर दिया तो उन्होंने उनके लिए ही मांगा, अपने लिए नहीं मांगा। तो इसीलिए कहा गया है उस शील संपन्न थे। तो ये नम्रता अगर भक्ति में आए तो ये भक्ति के लिए बहुत सरल जीवन को प्रस्तुत कर देती है, हमारा जीवन इतना सरल बना देती है ये नम्रता, कि जिससे भक्ति बड़ी आसानी से हृदय में प्रवेश करती है, हृदय बड़ा कोमल हो जाता है। नम्रता मतलब बाहरी नम्रता नहीं, कोई नम्र हो सकते हैं कि बाहर से बहुत नम्रता दिखाएं, उनको देखकर ऐसा लगे कि बस इनसे नम्र कोई और है ही नहीं, ये नम्रता नहीं है। नम्रता का अर्थ है हम अपने हृदय को कोमल बनाएं, जिसमें श्री कृष्ण आराम से आ सके। नम्रता का अर्थ है हम अपनी स्थिति को जाने, अपनी अवस्था को जाने, और नम्रता का अर्थ है हम उसे स्वीकार करें, इसे नम्रता कहते हैं, अपनी स्थिति को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपनी अवस्था को स्वीकार करना, नम्रता। तो अगर भक्ति में हम इस चीज को स्वीकार करते हैं तो बड़ी आसानी से। इसीलिए भक्ति मार्ग क्या है, दास दास दासानुदास। लेकिन हम सब के लिए ये केवल पेपर पर रह जाता है, लिखा हुआ बस, दास दास दासानुदास। ये शील संपन्नता जो गुण हम प्रहलाद महाराज का देख रहे हैं, जब हम इन चीजों को सुने, शुरुआत में जब हम लोग भक्ति में आते हैं, इन चीजों को सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे फिर इन चीजों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो ये नम्रता, ये हमें ऐसे 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 बाधाओं से दूर कर सकती है भक्ति मार्ग में, जो बाधाएं हमारी भक्ति का नाश कर सकती है, लेकिन केवल नम्रता से उनको जीता जा सकता है। साधवः साधुभूषणः, साधुओं का आभूषण क्या है? कोई गहना उनका आभूषण नहीं है, गहने से सौंदर्य नहीं बढ़ता, सोने चांदी हीरे मोती से सौंदर्य नहीं बढ़ता, धन से सौंदर्य नहीं बढ़ता, असली सौंदर्य है नम्रता। ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि व्यक्ति की ये सौंदर्य है, जो नम्र व्यक्ति है वो स्वाभाविक तरह से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसीलिए नम्रता ये भक्तों का, ये वैष्णवों का एक लक्षण है, शील संपन्न। इससे पता चलता है कि व्यक्ति वैष्णव है। वैष्णव अपनी भक्ति, अपने भगवान के प्रेम, अपनी रति से तो जाने ही जाते हैं, लेकिन अपने आचरण से भी जाने जाते हैं। वैष्णवों का आचरण कैसा होना चाहिए? प्रभुपाद कहते थे, जो हृदय में है वही बाहर होगा। तो अगर वो वैष्णव हैं, तो हृदय में अगर नम्रता है तो फिर स्वाभाविक है वो प्रकट होगी। तो इसलिए वैष्णवों के लिए ये आभूषण के समान है। आगे वो कह रहे हैं, ब्राह्मण्य शील संपन्न सत्य संधो। सत्य संध अर्थात प्रहलाद महाराज में ये गुण था कि वो जो भी कहते उसको पूरा करते। सत्य संध, सत्य कहते या जो भी कहते उसको पूरा करते, ये उनके गुण है। साधक की दृष्टि से अगर हम लोग भक्ति मार्ग में देखें, तो हमारे लिए हम जिन नियमों के पालन का वचन लेते हैं उसको सत्य करना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। हम लोग गुरु के सामने वचन लेते हैं कि हम प्रभुपाद के आंदोलन में दास दासानुदास के भाव में सेवा करेंगे, अपना जीवन समर्पित करेंगे, भूल जाते हैं। हम वचन लेते हैं कि हम नियमों का पालन बड़ी कड़ाई से करेंगे, भूल जाते। हम 16 माला जब प्रयास करेंगे ध्यान पूर्वक करने का नहीं, ध्यान पूर्वक करने का, भूल जाते। तो सत्य संध मतलब हम जो बोले हैं उसको सत्य करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारी जो प्रतिज्ञाएं हम लोग ले भक्ति में, वैसे तो हमें भक्ति में कोई बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें भीष्म कहलाने की आवश्यकता नहीं है, हमें वो प्रतिज्ञाएं लेनी चाहिए जो आचार्यों के द्वारा प्रमाणित हैं, और फिर उन प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहिए। ये भक्ति मार्ग है। जिन प्रतिज्ञाओं को हम लेते हैं, अगर उन प्रतिज्ञाओं के प्रति हम अपना पूर्ण जीवन समर्पित करें, तब हम गुरु को प्रसन्न करते हैं। गुरु की प्रसन्नता किसमें है? गुरु की प्रसन्नता ये देखने में है कि भक्त कितनी गंभीरता से, कितनी तीव्रता से और कितने हृदय से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहा है, अपने उन वचनों का पालन करते हुए जो उसने भक्ति मार्ग में लिए। ये गुरु की प्रसन्नता है, इससे गुरु प्रसन्न होते हैं। कई लोगों को बहुत सारे अलग अलग विचार हैं गुरु की प्रसन्नता के लिए। शायद गुरु उनकी सेवा करने से प्रसन्न होते हैं, गुरु इससे प्रसन्न होते हैं, गुरु उन सब चीजों से प्रसन्न होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं तब जब हम भक्ति में लिए हुए वचनों को बड़ी गंभीरता से पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए ये सत्य संध बहुत आवश्यक है। आगे उनका गुण बता रहे हैं, ब्राह्मण्य शील संपन्न सत्य संधो जितेंद्रिय। जितेंद्रिया, उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। भगवद गीता में भगवान बताते हैं, बहुत सारे श्लोकों में भगवान ने इंद्रियों के विषय में चर्चा की है कि कहां कैसे हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों से परे मन है, इंद्रियाणि परण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मनः, मन इंद्रियों के परे है, इंद्रियां शरीर से परे हैं, लेकिन मन से भी परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। अर्थात ये सारे शरीर में सर्वश्रेष्ठ आत्मा है और उस आत्मा को इन इंद्रियों का स्वामी नहीं बना, अगर वो स्वामी नहीं बन सका तो फिर दास के रूप में प्रकृति स्थानी करशति। अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता तो फिर उसके लिए केवल एक ही मार्ग है इस जगत में, संघर्ष इंद्रियों के साथ। जैसे भगवान बताते हैं, मनश्रेष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करशति। हम जीव हैं, हम शुद्ध जीवात्मा हैं, हमारा अस्तित्व आध्यात्मिक जगत में भगवान के एक पार्षद के रूप में है, लेकिन इस जगत में मनश्रेष्ठानि इंद्रियाणि, हम इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा हर लिए जाते हैं और फिर केवल कष्ट पाते हैं। तो इसीलिए इंद्रियों को वश में करना, जितेंद्रियः, भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जिसने मन पर वश में पा लिया है उसने परमात्मा को पा लिया, परमात्मा समाहितः। तो भगवान को पाने का मार्ग प्रारंभ होता है इंद्रियों को वश में करना। बहुत बार ऐसा माना जाता है कि जो इंद्रियों को वश में करने की बात है ये सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, वैरागियों के लिए है, गृहस्थों के लिए खुली छूट है। ऐसा नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति भक्ति करना चाहता है तो उसको इंद्रियों को वश में करना ही होगा। इसीलिए वर्णाश्रम पद्धति में जब छोटे से बालक को, 5 साल के बालक को या उस कभी कभी उससे भी छोटे बालक को जब गुरुकुल भेजा जाता था तो फिर नियम ये होता था कि उसको अगले 20 साल तक इंद्रियों को वश में करना सिखाया जाता था। फिर चाहे आगे चलकर वो गृहस्थ बने, ब्रह्मचारी रहकर सन्यासी बने या कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहला पाठ उसको इंद्रियों को वश में करना सिखाया जाता था। इसीलिए प्रभुपाद कहते थे कि हर पुरुष को ब्रह्मचारी बनना चाहिए और हर माताजी को विवाह करना चाहिए। तो जब भक्तों ने पूछा ये कैसे संभव है, अगर हर पुरुष ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो विवाह कौन करेंगे, तो प्रभुपाद ने समझाया कि हर एक को पहले प्रशिक्षण लेना चाहिए विवाह के पहले, क्योंकि विवाह ये केवल इंद्रिय भोग का एक साधन नहीं है। विवाह ये एक बहुत ही पवित्र संस्कार है जिसके द्वारा कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ा जाता है और इसका केवल एक ही उद्देश्य है, कृष्ण भक्ति में प्रगति, और कोई उद्देश्य नहीं है विवाह का। लेकिन अज्ञान के कारण ये मान लिया जाता है कि गृहस्थ जीवन अर्थात इंद्रिय भोग की छूट। तो जितेंद्रिय अर्थात हमें इंद्रियों को वश में करना चाहिए, क्योंकि इस जगत में अगर हम इंद्रियों को वश में नहीं करते हैं तो फिर हमारी इंद्रियां हमें भोगों की ओर ले जाती हैं और फिर भोग के द्वारा हमारा पतन हो जाता है, हम भगवान से दूर चले जाते हैं। इसलिए जितेंद्रिय ये बहुत आवश्यक है। भक्ति मार्ग में व्यक्ति को कुछ चीजें बड़ी आवश्यक होती हैं, जैसे व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का समर्पण, कितना उसने भगवान के प्रति समर्पण किया है, व्यक्ति का विश्वास, उसका आभार, ये कुछ चीजें हैं जो हमें मदद करती हैं। जैसे चरित्र, सबसे पहला चरित्र का अर्थ क्या है, किस प्रकार का हम आचरण करते हैं, कैसे हम अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, चरित्रवान व्यक्ति कौन है, चरित्रवान व्यक्ति वो नहीं है जिसको बड़े बड़े मेडल मिले हैं, जिसको लोग बड़ी सराहना करते हैं। चरित्रवान व्यक्ति वो है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ, उसे अच्छे चरित्र वाला कहते हैं। तो इसलिए भक्ति में चरित्र की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। किस विश्वास की? जैसा विश्वास हम लोग देखते हैं 11वें स्कंद में, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम। ये विश्वास, और ये विश्वास कब आता है? अवंती ब्राह्मण ने इस श्लोक को कहा, अहम तरिष्यामि, मैं पार कर जाऊंगा दुरंत पारम। कैसे कर जाऊंगा? चरित्र के द्वारा, और चरित्र अर्थात इंद्रियों को वश में करना। और बहुत जरूरी है, हमारी इंद्रियां इधर उधर भागती हैं और फिर हम कहते हैं कि भक्ति में ध्यान नहीं लगता, हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते। तो इसीलिए चरित्र, विश्वास, पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि यही एक मार्ग है भक्ति का, जो हमें अहम तरिष्यामि, केवल इसी के द्वारा। और फिर जब ऐसा विश्वास हो जाता है एक मार्ग पर, तो आभार प्रकट करता है व्यक्ति। जैसे हम लोग आभारी हैं, कृतज्ञ हैं श्री प्रभुपाद के प्रति कि उन्होंने मार्ग दिया हम लोगों को, नहीं तो हम लोग कहां होते। आज हम लोग देखते हैं इस कौन संस्था में कई बड़े बड़े वरिष्ठ भक्त हैं, कई बड़े बड़े सन्यासी हैं, लेकिन आप सोचिए अगर प्रभुपाद ने ये आंदोलन नहीं शुरुआत की होती तो कहां होते वो सब सन्यासी, कहां होते वो सब प्रचारक, कहां होते हम और आप। आभार, कृतज्ञता, ये बड़ी आवश्यक है भक्ति मार्ग में, और ये सारी चीजें हमें निर्भय बनाती है। जब हमारा चरित्र अच्छा है, हमें पूर्ण विश्वास है भक्ति मार्ग पर, हम आभारी हैं, कृतज्ञ हैं भक्तों के प्रति, आचार्यों के प्रति, परंपरा के प्रति, तो फिर ये चीजें हमें निर्भय बनाती है। अभय चरणारविंद रे, और हम लोग निर्भय होकर फिर भगवान की शरण में जा पाते हैं। तो इसीलिए हमें बड़े ध्यान से ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो इंद्रियां हैं, जो सारे कष्टों का कारण है। बिल्वा मंगल ठाकुर, उन्होंने जब देखा कि उनकी आंखें उनको भोगों की ओर ले जा रही है, उन्होंने आंखें फोड़ ली अपने द्वारा। हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। एक चीज समझनी चाहिए कि ये जो शरीर है ये भी कृष्ण की संपत्ति है। हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है, हम एक ही बात भूल जाते हैं, वस्तुतः सकलि तव जीव के होनाए, बस इस बात को भूल जाते हैं। और इसीलिए भूलने से भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, अहम मम भ्रमि भ्रमि भोगे शोक पाए, बस सरल है। सारा हमारा भक्ति का मार्ग, भक्ति का जो भी तरीका है करने का या कृष्ण को पाने का, वो केवल इन दो लाइन में है, वस्तुतः सकलि तव जीव के होना है। सब कुछ आपका है कृष्ण, जीव का तो कुछ है ही नहीं। वस्तुतः, वस्तुतः सच में, वस्तुतः मतलब असल में, सत्यता में, वस्तुतः सकलितव, सब आपका है। जीव के होना है, जीव का क्या है, के होना है, कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए हमारा अहंकार कितनी सूक्ष्म बात है समझने के लिए, वस्तुतः सकलितव जीव के होना है, फिर भी ये जीव इतना अहंकार, अहम मम भ्रमि भ्रमि भोगे शोक पाए, मैं और मेरे के चक्कर में फंस कर भोग करना चाहता है इसीलिए शोक पाए। सरल है, क्यों शोक होता है हमें जीवन में, क्यों कष्ट होता है, यही कारण भूल जाते हैं, वस्तु तो सकल ही तब, सब कुछ आपका है। और है भी, हमारा शरीर किसका है, किसने दिया है? तो फिर जब किसी का है तो उस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। मन खींचता है, जैसे आज आप लोग सब यहां पर आकर प्रहलाद महाराज के बारे में, कृष्ण के बारे में, या हर मंगलवार को आप लोग आकर महाभारत के विषय में सुनते हैं, तो क्या उस समय पर आपकी इंद्रियां, आपका मन कष्ट नहीं देता है? कुछ ना कुछ काम आ गया, कहीं यहीं जाना है, कहाँ जाना है, आज थोड़ा मौसम ठीक नहीं दिख रहा, कष्ट है। लेकिन जितेंद्रिय उन कष्टों को, उनको, मन को साइड में रख देते, नहीं रुक जाओ, इंद्रियों को बोलते हैं तुम यहीं रुको, आप थोड़ा देर घर में रुको, मैं मंदिर जाकर आता हूं। तो ये मार्ग है कि केवल इंद्रियों को जीतने का मार्ग क्या है कि केवल उनको दबा नहीं देना, उनको सही रूप में कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के भक्ति मार्ग में उनको लगाना, उसके द्वारा हम जितेंद्रिय बनते हैं। तो ये आप लोग गिन रहे हैं कितने गुण हो गए प्रहलाद महाराज के? हाँ, पांच गुण। कौन कौन से? महत उपासक, ब्राह्मण्य, शील संपन्न और सत्य संध, जितेंद्रिय। पांच गुणों का हम लोग। थैंक यू। किसी के पास घड़ी है?
8:20
तो आगे वर्णन करते हैं। आत्मवत् सर्वभूतानां एकप्रिय सुहृत्तम। आत्मवत् सर्वभूतानां, सारे जीवों को अपने ही समान वो प्रेम करते थे। आत्मवत् सर्वभूतानां, और इसीलिए एक प्रिय सुहृतमा, सबके सुहृत थे। और नारद मुनि तो वर्णन करते कि उस समय एक ही थे वो, एक प्रिय, उनके अलावा कोई नहीं था जिनको इतने सारे लोग प्रेम करते थे या वो सबको प्रेम करते थे। कितना प्रेम था अन्य जीवों के प्रति प्रहलाद महाराज का, उनकी प्रार्थनाओं से पता चलता है। जब नरसिंह देव ने कहा, नरसिंह देव की स्तुति कर रहे थे, तो बड़ा सुंदर वर्णन है। वो नरसिंह देव से कहने लगे, नरसिंह देव से मांग रहे थे, तो नरसिंह देव से कहने लगे कि देखिए, आप जीवों की सृष्टि करते हैं, इतना बड़ा भौतिक जगत बनाते हैं, कितना कष्ट लेना पड़ता है आपको। और सत्य भी है ना, कितने लाखों करोड़ों जीव हैं, उनको सारे उनके खाने की व्यवस्था करना, उनके रहने की व्यवस्था करना, कपड़े की व्यवस्था करना करना पड़ता है ना। हमारे रथ यात्रा होती है, बाहर से कुछ भक्त आते हैं, 1,500-2,000 भक्त, हम लोग को कई महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती है, हॉल बुक करना, ये करना, वो करो, और उस 3 दिनों में तो भक्त बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो ये तो कुछ 1,000-1,500 लाखों करोड़ों जीव हैं इस भौतिक जगत में, एक छोटे से इस ब्रह्मांड में, उन सब की व्यवस्था करना, उनको पानी, हवा, कपड़ा, रहने का जगह, कितनी सारी। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं इतना सारा आप प्रयास करते हो, और सही में प्रयास है ना। अगर आप रचना देखें इस भौतिक जगत की, जो रचना है, तो वो केवल समझने के लिए आपको कितना प्रयास करना पड़ता है, फिर भगवान को रचना करने के लिए कितना प्रयास करना। तो प्रहलाद महाराज इनसे कहने लगे, आप इतना प्रयास करते हो तो इससे अच्छा है कि इन सबको मुक्त कर दो, उसके लिए तो आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वहां चले जाएंगे सब आध्यात्मिक जगत में, वहां आपको चिंता नहीं है, वहां आपको उनको कपड़ा लत्ता वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है, सब कल्प वृक्ष अपने आप आ जाएगा। तो ये प्रार्थना प्रहलाद महाराज ने की, तो ये उनका प्रेम था जीवों के प्रति। शास्त्रों में वर्णन है कि प्रहलाद महाराज की प्रार्थना के कारण भगवान ने एक ब्रह्मांड के सारे जीवों को वैकुंठ भेज दिया। तो ये उनका प्रेम था आत्मवत् सर्वभूतानां, और एक ही थे ऐसे, एक प्रिय सुहृत्तमा, क्योंकि उनका प्रेम था जैसे भगवान का है। जैसे हम लोग वर्णन कर रहे थे परमात्मा, ये सुहृद हैं सबके। परमात्मा देखिए कहां कहां नहीं, छोटे से कीड़े के साथ भी रहते हैं, बड़े से हाथी के साथ भी रहते हैं, मनुष्यों में रहते, सब जगह परमात्मा है, सुहृद है। ऐसे ही प्रहलाद महाराज सभी जीवों के सुहृद थे, तभी तो ये प्रार्थना की। नहीं तो कहते कि ठीक है, 21 पीढ़ी को आपने तार दिया मेरी, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बस मेरा काम हो गया। प्रहलाद महाराज ने कहा सारे जीवों के, इस ब्रह्मांड के सारे जीवों को, और भगवान को ले जाना पड़ा, क्योंकि प्रहलाद महाराज की प्रार्थना थी। तो इसीलिए आत्मवत सर्वभूतानां। आगे तीन गुण उनके बहुत सुंदर बताए जा रहे हैं जो हमें भक्ति में पालन करने चाहिए, और वो तीन गुण हैं। सबसे पहला है दासवत, दूसरा है पितृवत, और तीसरा है भ्रातृवत। प्रहलाद महाराज अलग अलग प्रकार के लोगों से कैसे व्यवहार करते थे, ये वर्णन है। सबसे पहला वर्णन कर रहे हैं कि दासवत सन्नत अंग्री, सन्नत आर्य अंग्री। तो जो श्रेष्ठ लोग होते थे उनके प्रति उनका कैसा व्यवहार था, प्रहलाद महाराज का दासवत, एक दास के रूप में अपने आप को उनके सामने वो प्रस्तुत करते थे, दासवत। और पितृवत, पितृवत किनको करते थे, पितृवत दीन वत्सलः, जो उनके स्थिति के अनुसार दीन थे उनसे पिता के समान आचरण करते थे वात्सल्य भाव में। और भ्रातृवत सदृशे स्निग्धो, और जो उनके समान थे उनसे एक भाई की तरह, एक भ्रात्र की तरह वो प्रेम करते थे। तो ये तीन अवस्थाएं बताई हैं जो बहुत आवश्यक हैं हम सब के लिए भक्ति मार्ग में जानना। अपने वरिष्ठों से कैसा आचरण करना चाहिए, अपने साथ वालों के साथ, और अपने से जो कनिष्ठ हैं। वैसे एक वैष्णव को अपने आप को सबसे कनिष्ठ मानना चाहिए, फिर उससे कनिष्ठ तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी प्रचार की दृष्टि से एक प्रचारक को इन तीनों अवस्थाओं को ग्रहण करना पड़ता है। तो जो हमारे से वरिष्ठ हैं, आगे चलकर ये भी वर्णन आएगा कि गुरु को कैसे आदर करना चाहिए, वो भी प्रहलाद महाराज सिखलाते हैं। लेकिन अभी केवल इन तीन अवस्थाओं का, तीन प्रकार के भक्तों का। जो हमसे वरिष्ठ हैं उनके लिए दासवत, हमें उनके हमेशा दास बनना है, क्योंकि वो हमसे श्रेष्ठ हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, हमसे ज्यादा ज्ञान है उन्हें, हमारे से ज्यादा भक्ति है। तो अगर हम दासवत उनकी सेवा करते हैं और अपनी सेवा के द्वारा उनको प्रसन्न करते हैं, तो फिर उनकी जो स्थिति है, उनकी जो भक्ति है, उनका जो स्तर है, तो उस स्तर पर रहते हुए वो जब हमें आशीर्वाद देते हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि बस मैंने तो शास्त्र पढ़ लिए, मुझे भगवत गीता भागवत आती है, मुझे किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। नहीं, हम लोग देखते हैं दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज दोनों के अंतर को। युधिष्ठिर महाराज को कवच था आशीर्वादों का, और दुर्योधन के पास क्या था, केवल श्राप। तो इसलिए भक्ति मार्ग भी ऐसा ही है, जितने ज्यादा आशीर्वाद, जितने ज्यादा हम वरिष्ठों के कृपा को ग्रहण करेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और ग्रहण करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के एक भक्त थे जिनको सब लोग कहते थे कि आपके ऊपर प्रभुपाद की बहुत कृपा है, प्रभुपाद आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा करते हैं, बहुत बार सुना उन्होंने। तो एक बार प्रभुपाद के पास जाकर पूछा, प्रभुपाद सब लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत कृपा है आपकी, सच है क्या? प्रभुपाद ने कहा नहीं, मेरी कृपा सबके ऊपर समान रूप से है, केवल आपने उसको अच्छी तरह से ग्रहण किया। ये मार्ग है, जैसे वर्षा होती है, वर्षा सारी भूमि पर होती है। वर्षा ये नहीं कहती कि आसपास की भूमि उपजाऊ है, बीच की भूमि बंजर है, मैं वहां पर नहीं गिरूंगी। वर्षा सब जगह होती है, तो वही वर्षा उपजाऊ भूमि पर होती है और बंजर भूमि पर भी। लेकिन बंजर भूमि उस वर्षा को ग्रहण करके अन्न नहीं दे पाती, लेकिन उपजाऊ भूमि दे देती है। तो इसीलिए अपने हृदय को हमें उपजाऊ बनाना चाहिए। जब गुरु की कृपा, जब वरिष्ठों की कृपा की वर्षा हो, तो हम उस उपजाऊ भूमि से अन्न उत्पन्न कर सकें, एक पौधा आ जाए, भक्ति का पौधा, भक्ति लता बीज। तो इसीलिए भक्ति लता को लाना है तो फिर उपजाऊ बनाना चाहिए भूमि को, नहीं तो वरिष्ठों की कृपा आती रहेगी, आशीर्वाद आते रहेंगे, लेकिन हमारा दरवाजा बंद रहेगा। तो इसीलिए वरिष्ठों से हमें दासवत और पितृवत दीनवत सलाह, जो हमसे कनिष्ठ हैं, जो हमसे कुछ आशा करते हैं, हमसे ज्ञान चाहते हैं, उनके प्रति एक पिता के समान वात्सल्य भाव होना चाहिए, जैसे एक पिता का होता है। वो देखता है कि कोई लड़का बहुत अच्छा है, कोई लड़का ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी समान दृष्टि से सबके लिए वो कार्य करता है, एक पिता का कर्तव्य है। तो इसलिए पितृ दीनवत्सलः, पितृवत दीनवत्सलः, तो दीनों के ऊपर हमें ऐसा वात्सल्य भाव होना चाहिए, और जो हमारे समान हैं उनके प्रति भ्रातृवत, एक सखा के समान, एक भाई के समान हमें आचरण करना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के लोगों को हम भक्ति में आगे बढ़ा सकें। तो ऐसा यहाँ पर ये तीन प्रकार के वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, और ऐसा तब कर सकते हैं जब हम भगवान की शक्ति को जानें, भगवान से द्वेष नहीं करें, तब हम ऐसे अलग अलग रूपों में भगवान की भक्ति के प्रचार के हेतु आचरण कर पाएंगे। अन्यथा हम तो केवल भगवान पर दोषारोपण करते हैं। कभी कभी कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है, दुर्घटना, तो लोग भगवान को ब्लेम करने, भगवान पर दोषारोपण करने लगते हैं, कहते हैं कहाँ है तुम्हारा भगवान, इतना बड़ा कुछ हुआ, इतने लोग मरे, मासूम लोगों की जान गई, भगवान कहाँ है। तो एक बार एक भक्त ने बहुत सुंदर, एक किसी ने हमें भेजा था, भक्त नहीं थे, उन्होंने भेजा था, जब अमेरिका में वो दो बहुत बड़े बड़े टावर गिरे थे, आप लोगों को ध्यान होगा अमेरिका के बहुत बड़े दो टावर थे, उनको वैसे नरसिंह लीला का भी तुलना उससे की जाती है कि हिरण्यकश्यपु ने दो बहुत बड़े टावर बनाए थे, लेकिन प्रहलाद नाम के छोटे से प्लेन ने उसका सारा विध्वंस कर दिया। तो खैर जब वो हुआ था तो उसके बाद किसी ने लिखा, तो उसके बाद बहुत से लोगों ने प्रश्न किया था, भगवान कहाँ थे, कितने लोग मारे गए, कितने लोग फंस गए, निकल नहीं पाए, स्त्रियां थी, बच्चे थे, तो ये सब क्यों, भगवान कहाँ थे। तो एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर लिख कर भेजा कि भगवान कहाँ थे उस समय, तो उसने लिखा कि भगवान बहुत व्यस्त थे, बहुत बिजी थे भगवान। किस में बिजी थे, तो सबसे पहले उसने लिखा कि जो प्लेन उड़े थे, दरअसल उन प्लेन्स में, उन विमानों में 1000 लोगों के बैठने की क्षमता थी, 1000 लोग उसमें बैठ सकते थे, लेकिन उस दिन केवल 265 लोग बैठे थे। तो बताने लगे कि भगवान बड़े व्यस्त थे बाकी लोगों को रोकने के लिए कि तुम जाओ नहीं, जाओ नहीं, प्लेन में चढ़ो नहीं। फिर वो कहने लगे कि वो जो दो इमारतें थी उसमें कुल मिलाकर 50,000 लोग काम करते थे उस दिन, वैसे उस दिन को छोड़कर 50,000 लोग काम करते थे, और लेकिन उस दिन आश्चर्य की बात कि केवल 20,000 लोग वहां पर थे उस बिल्डिंग में, 30,000 लोग नहीं थे। तो उस व्यक्ति ने लिखा कि भगवान बड़े व्यस्त थे उन 30,000 लोगों को रोकने के लिए कि तुम पहुंचो मत, तुम पहुंचो मत। और बाद में जब बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए गए तो कई लोगों ने जो पहुंच नहीं पाए उन्होंने बताया कि हम लोग कहीं ट्रैफिक में फंस गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, 30,000 लोग पहुंच नहीं पाए। तो उस व्यक्ति ने लिखा भगवान बड़े व्यस्त थे उन लोगों को रोकने के लिए, तो पहुंचो मत। तो ये भी देखने का नजरिया है कि एक व्यक्ति देख रहा है कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, इतने सारे लोग मरे, लेकिन दूसरा व्यक्ति देख रहा है कि देखो कितने सारे बच रहे हैं। जैसे हमने रविवार को भी वर्णन किया था टाइटैनिक के, फैमिली जा नहीं पाई, ये देखने का नजरिया है हमारा, तो ऐसे हमें देखना चाहिए। तो जब हम ये देखते हैं कि किस तरह से भगवान सब अवस्थाओं में हमारी रक्षा करते हैं, और वैसे भी सब कुछ उनका ही है, इस शरीर भी उनका है, तो इस शरीर को उनका मानते हुए उनकी सेवा में लगाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण और भक्ति मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण अंग कहना चाहिए। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति क्या है? अपने शरीर को अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी जीभा को, अपनी वाचा को, सबको भगवान की सेवा में लगा, ये भक्ति है जिसको हम कर नहीं पाते। सुनते हैं, बहुत बार सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सेवा यही है, मार्ग यही है, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत है। दो प्रकार की चेतनाएं होती हैं, हम लोग अभी वर्णन कर रहे थे आत्मवत गुण का, आत्मवत सर्वभूताना। तो दो प्रकार की चेतनाएं होती हैं, एक परम चेतना और दूसरी व्यक्तिगत चेतना या आत्मा। ये शरीर का महत्व तब तक है जब तक इसमें परमात्मा है, नहीं तो उसके बाद शरीर का कोई महत्व है? परमात्मा निकल जाते हैं इस शरीर को, हम लोग सूर्यास्त होने के पहले तक जला वला के खत्म कर देते हैं, रखना नहीं चाहता है, क्योंकि इसमें से परमात्मा चले गए। दरअसल हम जो आदर सम्मान देते हैं वो परमात्मा को देते हैं, इसीलिए जब कोई दंडवत करे तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मुझे कर रहे हैं। दरअसल हमारे दंडवत हृदय में बैठे हुए परमात्मा के लिए होते हैं, और फिर उस भक्त के लिए होते हैं क्योंकि उसके हृदय में परमात्मा है, उसने जान लिया है कि हृदय में परमात्मा, वैसे तो सबके हैं। तो दरअसल ये दंडवत प्रणाम उनके लिए होता है, लेकिन जब इस शरीर से वो परमात्मा चले जाते हैं तो फिर शरीर को जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो ये चेतनाएं दो हैं, आत्मवत, इसलिए एक चेतना है परम चेतना और एक चेतना है व्यक्तिगत चेतना, और उस व्यक्तिगत चेतना को परम चेतना सदैव मार्गदर्शन देती रहती है इस भौतिक जगत में। तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग किस तरह से अपनों से, अपने जो वरिष्ठ हैं या अपने जो साथ के हैं, उनके साथ कैसे आचरण करें, किस चेतना में रहकर आचरण करें, देखने का क्या नजरिया हो हमारा, हम एक ही चीज को कैसे कैसे देख सकते हैं। कोई देख सकता है कि भगवान नहीं थे, कोई देखता है कि भगवान बड़े व्यस्त थे। तो हमारी चेतनाओं में अंतर होना चाहिए, जितना ज्यादा हम अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं उतना ज्यादा भगवान के निकट जाते हैं। 84 लाख योनियां ये चेतनाओं के स्तर हैं, जो सबसे नीचे का स्तर है अर्थात उसकी चेतना भगवान से बहुत दूर है, और जो सबसे ऊंचा स्तर है परमहंस, उसका अर्थ ये होता है कि उनकी चेतना भगवान के बहुत निकट है। बस यही अंतर है 84 लाख योनियों में। बाहरी शरीर ये तो अलग अलग दिखते हैं, लेकिन मूल है चेतना, और इसीलिए हमें भक्ति के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए। जितना ज्यादा हम चेतना को शुद्ध करेंगे उतना ज्यादा हम बाहरी भोगों से, बाहरी कष्टों से दूर जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति शुद्ध चेतना में है उसको बाहरी कष्ट नहीं सताते हैं। प्रहलाद महाराज को देखिए, ऊपर से उठाकर फेंक दिया गया पर्वत के ऊपर से, सांपों के बीच में फेंका, हाथी के पास फेंका, कुचल जाए, तलवारों से, भालों से मारने का प्रयास किया, प्रहलाद महाराज ने कोई विरोध नहीं किया, केवल अपनी चेतना को शुद्ध रखा, भगवान में लगाए रखा, और बाहरी कोई कष्ट नहीं। तो प्रहलाद महाराज ने दिखलाया कि सारी चीजें चेतना पर आधारित हैं। भक्ति में आध्यात्मिक जगत का हम लोग वर्णन करते हैं, तो आध्यात्मिक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत ये ऐसी चेतना का स्थान है जहां हम दूसरों को बढ़ावा देते हैं, जहां हम दूसरों के लिए कार्य करते हैं, जहां हम दूसरों में केवल अच्छाई देखते हैं। और भौतिक जगत की चेतना क्या है? केवल गंदगी देखना। एक समय एक स्थान पर बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगी हुई थी, प्रदर्शनी, बहुत सुंदर सुंदर चित्र बने हुए थे और बहुत बड़ी थी, बहुत सारे लोग देख रहे थे। उनमें से एक बूढ़ी स्त्री थी, वो हर एक जो पेंटिंग थी, हर एक जो चित्र था उसके बहुत निकट से जाकर उसको बड़े ध्यान से देखती, फिर दूसरे चित्र, फिर तीसरा, लेकिन हर एक को बहुत ध्यान से देखती। तो जब ये पूरा हो गया तो एक व्यक्ति देख रहा था कि ये महिला बहुत ध्यान से देख रही है। तो फिर उसने उससे पूछा कि आपको कैसी लगी ये प्रदर्शनी। महिला ने कहा बहुत बढ़िया है, मैंने बड़े ध्यान से देखा, किसी भी पेंटिंग में जरा भी गंदगी नहीं है, जरा भी मिट्टी नहीं है यहां पर, बहुत अच्छा। तो इससे क्या पता चला, आप लोग भी समझ नहीं पाए लगता, आपको लगा हाँ बहुत अच्छी बात है। पता ये चला कि जब वो पेंटिंग्स को देख रही थी बड़े ध्यान से, तो पेंटिंग को नहीं देख रही थी, गंदगी कहाँ है देख रही थी कि गंदगी है या नहीं। फिर दूसरी पेंटिंग, फिर तीसरी में ध्यान बड़ा था, लेकिन चेतना कहाँ थी, गंदगी में। तो वो क्या देख पाए कि गंदगी नहीं है, गंदगी है या नहीं बस, लेकिन वो चित्र उसको नहीं देख पाए। तो हमारी चेतना भी यही है, हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान के संग में है, भक्तों के संग में है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं उस गंदगी को, हमारी चेतना। तो आध्यात्मिक जगत की चेतना क्या है? आध्यात्मिक जगत की चेतना है एक दूसरे को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ाएं भक्ति में। हर कोई व्यक्ति कृष्ण के लिए कार्य करे, हर कोई व्यक्ति सहयोग करे एक दूसरे से, एक दूसरे को सहयोग करते हुए कृष्ण की ओर ले जाना, ये आध्यात्मिक चेतना। और आचार्यों ने समझाया है कि अगर हम इस चेतना को अपने परिवार में, अपने समाज में अगर हम ले आते हैं, भक्त समाज में, तो फिर यही वैकुंठ है, यही आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत ये चेतना है। प्रभुपाद ने समझाया, चौथे स्कंद में प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक जगत नाम की कोई चीज नहीं है, ये तो केवल चेतना है, जिस दूषित चेतना से हम इन चीजों को देखते हैं, इसलिए भौतिक मालूम होता है। तो इस वैसे तो और बहुत सारे गुण हैं प्रहलाद महाराज के, लेकिन समय क्या हुआ, 8:40, तो भगवान के दर्शन का समय हुआ है। प्रहलाद महाराज के गुण और कई आगे के श्लोकों में भी वर्णन हुए हैं, हम लोग पूरी तो चर्चा नहीं कर पाए, बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं आगे उनके। एक गुण और बताया गया है कि कैसे कोई भी बाधा आए तो प्रहलाद महाराज विचलित नहीं होते थे, ये भी एक बहुत सुंदर गुण है जो भक्ति मार्ग में हम ला सकते हैं। खैर एक एक गुण प्रहलाद महाराज का ऐसा ही है, लेकिन विशेषता आज के इन कुछ गुणों पर जो हमने 5-6 गुणों पर चर्चा की, वैसे लिस्ट बहुत लंबी है, एक मूल बात हम जान सकते हैं कि अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए, और चेतना को शुद्ध करने के लिए अपना चरित्र, अपना विश्वास, अपनी कृतज्ञता और अपनी निर्भयता को बढ़ाना चाहिए। और वो बढ़ सकती है जब हम अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए उनको भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान की नामों का उच्चारण करें, भगवान की अन्य सेवाओं में लगें, और उसके द्वारा एक ऐसे आध्यात्मिक वातावरण को उत्पन्न करें जहां सबकी चेतना शुद्ध हो, जहां एक दूसरे को बढ़ावा देते हुए हम कृष्ण की ओर जा सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।